السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک ٹو اندر اپیسوڈ آف دل کی بات۔ پہلے تو معذرت، میں وینسڈے والے دن نہیں آ سکا، انفارچونیٹلی مجھے تھوڑا سا فلو ہوا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں نے بڑی کوشش کی لیکن آئی کوڈنٹ گیٹ مائی سیلف ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ اسپیک۔ آج بھی میری طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، بٹ الحمد للہ گڈ انف کہ آئی کین سٹ ڈاؤن اینڈ ڈیلیور دس ویڈیو۔ پچھلی تین ایپیسوڈز میں ہم نے ایکسٹینسولی اکانومی کو سمجھا، جنرلی جتنی چیزیں بتائیں وہ زیادہ انفارچونیٹلی نیگیٹو تھیں پاکستان کے بارے میں۔ تو کامنٹ سیکشن میں مجھے بڑے سارے لوگ آ کے کہہ رہے تھے کہ مزمل بھائی، آپ کی تو ایپیسوڈز دیکھ کے یو نو ڈپریشن ہو رہی ہے، نیگیٹو فیلنگ ہو رہی ہے، آپ بس بری چیزیں بتا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس ایپیسوڈ میں اور اگلے ایپیسوڈ میں دو انٹرسٹنگ چیزیں بتاؤں۔ پہلا تو یہ، اس ایپیسوڈ میں ہم فوکس کریں گے کہ انڈیویجولز، جیسا کہ آپ ہیں، جیسا کہ میں ہوں، ہم انڈیویجولز کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں اس انفلیشن سائیکل میں، اس یو نو ڈیٹ سائیکل میں، جہاں پر قرضے بڑھیں گے، مہنگائی ہوگی، جاب لیسنس ہوگی، تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں اور پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری ایپیسوڈ میں اوور آل میکرو پکچر دوں گا کہ آنے والے وقت میں کون سی ایسی اپرچونیٹیز ہیں فار پاکستان کہ جب وہ اس سائیکل میں جو برا سائیکل آ رہا ہے، اس سائیکل سے گزرنے کے بعد جو اگر انہوں نے گروتھ کی طرف جانا ہے تو کون سی ایسی چیزوں کو وہ لیوریج کر سکتے ہیں جس سے ہم سسٹینیبل اسکیلیبل ڈیولپمنٹ کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ سو دیٹس گونا بی دی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ میں میں تھوڑا سا اگر ذکر کروں تو پہلے جو ہم نے پچھلے تین ایپیسوڈس میں ڈسکس کیا، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر گورنمنٹ کے پاس صرف دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ اسٹرکچرل چینجز کی طرف جائیں جس میں ظاہر ہے کہ مہنگائی بڑھے گی، جس میں شارٹ ٹرم میں لیکن مہنگائی بڑھے گی، سرٹن شاید جاب لیسنس ہو سکتی ہے سرٹن انڈسٹریز کے اندر، اوور آل پین آئے گا سوسائٹی کے اندر۔ ہمیں کچھ عرصے کے لیے نا ہمیں تھوڑا سا نفٹی ہونا پڑے گا، ہماری قوت خرید گر جائے گی، ہم جن لگژریز کو، جن چیزوں کو جو کہ ہم نیڈز بنا چکے ہیں وہ شاید ہماری وانٹس ہو جائیں گی، ہمیں تھوڑا سا کٹ بیک کرنا پڑے گا، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری سمت درست ہو جائے گی اور پھر اوور ٹائم ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ گورنمنٹ آئے اور آ کے وہ ابھی پھر سے بزنس ایز یوزول کرے، وہ پھر سے ڈالر کو کنٹرول کرے، وہ پھر سے ٹیکسز کو بڑھانے کی کوشش نہ کرے، وہ لوگوں کو سیملنس آف پراسپیرٹی دے، وہ کہہ کے دیکھو ذرا مہنگائی نہیں ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اب پاکستان کی اکانومی اتنی بڑی ہو چکی ہے، پرابلمز اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ یہ والا سائیکل اس بار شاید 6-8 مہینے سے زیادہ نہ چلے، اور جب اس سائیکل کے اینڈ پہ جب بسٹ آئے گا تو وہ اتنا گندا ہوگا کہ پھر سے وہی مسئلے، یو نو مہنگائی، جاب لیسنس، حالات خراب، ایجیٹیشن۔ بٹ اگر ہم اس طرح سے 6-8 مہینے کے بوم کے بعد بسٹ پہ جائیں گے تو پھر ریکوری تھوڑی سی پرولونگڈ ہوگی، وہ اتنی کوئکلی ہم شاید نہ ریکور کر پائیں، جو کہ اگر ہم اسٹرکچرل چینجز کر لیں تو آئی تھنک کہ ہم کوئکلی اس سے نکل سکتے ہیں، اتنی کوئی بگ ڈیل نہیں ہے۔ اب ایک عام آدمی جو بیٹھا ہوا ہے وہ ظاہر ہے سوچ رہا ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں شاید 5 لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، جتنے بھی روپئے پڑے ہوئے، وہ کوئی نہ کوئی اس کی سیونگ ہے، اس نے رکھی ہوئی ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یار میری تو سیونگ ساری تباہ ہو جائے گی اگر ہم خدا نہ خاصہ ہائپر انفلیشن کی طرف چلے گئے۔ ہائپر انفلیشن کی طرف نہ بھی گئے، اگر 40-45% جو انفلیشن جس طرح کی ہم نے دیکھی ہے ریسنٹ ٹائمس کے اندر، اگر اسی طرح کی بھی مینٹین ہوئی تو میرے پاس 10 لاکھ روپئے ہیں، سال کے آخر میں 40% اس کا ضائع ہو جائے گا، تو 6 لاکھ روپئے کی ویلیو رہ جائے گی، اور پھر اسی طریقے سے وہ ہر سال اگر ہوتا رہے تو میں تو فارغ ہو جاؤں گا، میں نے تو جو محنت ساری کی ساری کی ہے وہ میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ سو واٹ کین آئی ڈو؟ پہلا تو یہ سوال آتا ہے کہ جو میری سیونگز ہیں، جو میری ایگزسٹنگ ویلیو، جو میں نے ویلیو کریٹ کی اور اس کے عوض میں نے پیسے لیے، وہ پیسے میری ویلیو ایئر آن ایئر لوز کر رہے ہیں، تو میں اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کروں اور کس طرح سے گرو کرا سکوں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کی اب سمت ایک طرف سے دوسری طرف جانی ہے، جہاں پر ہم نے امپورٹ لیڈ اکانومی کو ایکسپورٹ ڈریون اکانومی کی طرف لے کر جانا ہے، جہاں پر ہم نے کنزمپشن اکانومی سے ہٹ کے پروڈکٹیو اکانومی کی طرف جانا ہے، وہاں پر میں ایسا کیا کر سکتا ہوں جس کے اندر جو ہے نا میں اس پروڈکٹیو اکانومی کا حصہ بن جاؤں یا اس ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کا حصہ بن جاؤں، تاکہ میری جو انویسٹمنٹس ہیں، ٹھیک ہے میں نے وہ تو پروٹیکٹ کر لیں، بٹ میری جو ارننگز ہیں وہ بھی بائی اینڈ لارج ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو جائیں فرام آل آف دس ٹربیولنس دیٹ وی آر سیئنگ اینڈ ول کنٹینیو ٹو سی۔ اچھا، اب یہاں پر جن چیزوں کے بارے میں آج میں بات کر رہا ہوں وہ ذرا کمپیریٹیولی شارٹ ٹرم ہے، وہ یعنی کہ اگلے 6 مہینے، 1 سال کی گیم ہے۔ اگر ہم ویسے جو جنرلی بات کر سکتے ہیں، بڑے بڑے نعرہ بازی ہے کہ یار آپ ایکسپورٹ کے بزنسز بنائیں، آپ ایسا دھندا چلائیں، آپ وہ فیکٹری لگا دیں، لیکن یہ تمام چیزیں اتنا آسان نہیں ہیں، یہ ان چیزوں کو 3-5 سال لگیں گے بفور دے کین بی سکسیزفل، اس میں انویسٹمنٹس ہوں گی بفور منی کین بی ٹیکن آؤٹ۔ جو عام آدمی مجھے آج بیٹھا دیکھ رہا ہے، بائی اینڈ لارج اس کے پاس 3-4 سال نہیں ہے، نہ ہی 3-4 سال کی انویسٹمنٹ ہے، اس کو اس وقت جو اپنی جمع پونجی ہے اس کو بچانا ہے، اور اس نے انشور کرنا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جہاں پر وہ اسپائکس آئیں گی انفلیشن کی یا حالات خراب ہوں گے، اس پہ وہ اپنے کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ امیڈیٹ ہیں، وہ شارٹ ٹرم ہیں، وہ چیزیں ہیں جو کہ فیز 1 کے اندر پاکستانیوں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اگین، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اگر یہ چیزیں کریں یا آپ نہ کریں، سم ون ول ڈو دیز تھنگس ار ریسپیکٹو، اینڈ دوز پیپل ول بی ایبل ٹو پروٹیکٹ دم سیلوز۔ تو جنرلی خود یہ وہ چیزیں جو کہ میں نے اپنے لیے فگر آؤٹ کی، خود دیکھا کہ یار میرا کیا فریم ورک ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہوں، आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बता सकते हैं। बट ये मेरा फ्रेमवर्क है, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस यहाँ पे कतई नहीं दे रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। वो लोग जिनके पास ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है, वो उस कैश को कहाँ पे लगा सकते हैं ताकि वो आने वाले स्टॉर्म से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें। अब जाहिर है बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे पास कैश फारिग पड़ा हुआ है, इस कैश को इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस बना लो, कोई रेस्टोरेंट खोल लो, कोई यू नो कोई भी दुकान चला लो, कोई ई कॉमर्स का बिजनेस खोल लो। पर्सनली मैं ये रेकमेंड करूंगा कि इस वक्त नोबडी शुड बी इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। कोई रेस्टोरेंट खोलने की जरूरत नहीं है कोई भी, क्योंकि तमाम कंजम्पशन ड्रिवन चीज़ें हैं। आप माल को उठा के माल को बेच रहे हैं, कोई स्मॉल ई कॉमर्स का बिजनेस ना करें। अगर आप खुद कुछ घर पे बनाते हैं, यू नो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है, उससे आपका ताल्लुक है, तो आप करते रहें, मैं उसको डिस्करेज नहीं कर रहा। बट ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनके लिए अभी हालात मुश्किल होने वाले हैं, बाइंग पावर कम होने वाली है, लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात आने वाली हैं। तो इस वक्त बिजनेस खोलना जहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है कि इकॉनमी स्लो डाउन की तरफ है, इट्स अ बैड आइडिया। स्पेशली अगर आप नए बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, अभी तो आपने जाके सीखना है, अभी तो आपने बहुत सारे फेलियर्स गो थ्रू करने हैं बिफोर यू कैन गो टू वर्ड सक्सेस। जब ऑलरेडी आप किसी चीज़ में फ्रेश घुस रहे हैं और उसमें भी जब इकॉनमी जो है वो आपके खिलाफ है, तो वाई वुड यू वॉन्ट टू स्विम अगेंस्ट द टाइड। पर्सनली आई वुड रिकमेंड कि इस वक्त अगर आपने 40-50-60 लाख रुपया रखा था कि यार मैं कोई यू नो पोल्ट्री फार्म खोल लूँगा या मैं कोई यू नो रेस्टोरेंट खोल लूँगा, तो फॉर द नेक्स्ट वन ईयर आई वुड से होल्ड ऑफ, डोंट इन्वेस्ट दैट मनी इन टू ए न्यू बिजनेस। अच्छा मैं थोड़ा सा ना बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं चाहूँगा कि आप लोगों को मैं स्टॉक मार्केट समझा दूँ। पाकिस्तान में पता नहीं क्या वियर्ड रीज़न है कि हम लोग स्टॉक्स को और स्टॉक मार्केट को सीरियसली नहीं लेते। शायद लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, शायद लोगों को लगता है कि यार ये कोई चूना है, अन इस्लामिक है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू द स्टॉक मार्केट वेरी वेरी क्विकली। अगेन मैं कॉन्टेक्स्ट आपको दे देता हूँ। पाकिस्तान में 220,000 लोग जो हैं वो उन्होंने किसी ना किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे हुए स्टॉक मार्केट में। बांग्लादेश जिसकी पॉपुलेशन हमसे कम है, वहां पर हमसे 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं। 2 मिलियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन देयर स्टॉक मार्केट। इंडिया में यही नंबर क्लोज टू 150 मिलियन है। कैन यू इमेजिन कि 1 in 10 पीपल इन इंडिया is invested into their stock market, while in Pakistan that is 1 in 1,000 people. That's insane. So let me talk to you a little bit about the stock market. और वो है क्या? अब आप imagine करें कि आपके पास एक नान की दुकान है और वो नान की दुकान आपने ही शुरू की, आप ही उसको चलाते हैं, आपने उसमें बंदे हायर किए हुए हैं, लेकिन वो बेसिकली ओनरशिप आपकी है। तो अगर आप वाहिद ओनर हैं तो 100% उस दुकान की ओनरशिप आपके पास है। अब आपने उस एक नान की दुकान को 2 नान की दुकान में कन्वर्ट करना है, लेकिन जब आपने ये पहली बनाई थी तो आपके पास 10 लाख रुपया था, आपने वो 10 लाख रुपया लगा के ये नान की दुकान लगा दी। अब आपको महीने का 10,000 रुपया उसमें से मुनाफा आ जाता है। अब आपने ये देखा, आपने कहा यार मुझे अगर एक दुकान से 10,000 रुपया मुनाफा आ रहा है तो अगर मैं इस तरह की 2 दुकानें बना लूँ तो मुझे महीने का 20,000 रुपया मुनाफा आ जाएगा। लेकिन आपने तो वो जो नान की दुकान है वो ऑलरेडी उसके ऊपर 10 लाख लगा दिया हुआ है और कोई कैश नहीं है, तो फिर आप कहेंगे कि अच्छा यार अब तो मुझे कुछ 6-8 साल वेट करना पड़ेगा, ये सारा का सारा कैश जो है संभालना पड़ेगा, फिर मेरे पास 10 लाख रुपए आएंगे, उससे मैं दूसरी दुकान लगाऊंगा। या दूसरा तरीका ये है कि मैं जाता हूँ और मैं जाके अपने दोस्त को बोलता हूँ कि यार ये देखो 10 लाख रुपया मैंने लगाया था नान की दुकान के ऊपर और उससे मैं 10,000 रुपया मुनाफा ले रहा हूँ, तो आप उसको जाके बोलेंगे कि यार तुम मुझे 10 लाख रुपए दो, काम सारा मैं करूंगा, सारा का सारी मेहनत मेरी लगेगी, तुम इन्वेस्टर बनो, मैं तुम्हें 30% या 25% देता हूं अपनी कंपनी का और तुम मुझे 10 लाख रुपए दो, अब हम एक दुकान के बजाय 2 दुकानें लगा लेंगे। तो आप उससे पैसा लेते हैं और पैसा लेके आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, अब आपकी कंपनी के पास 2 दुकानें हो गई हैं, आपका महाना मुनाफा 20,000 रुपया हो गया है, आपकी कंपनी का 25% शेयर जो है वो आपने अपने दोस्त को दे दिया है और महीने के आखिर में 15,000 रुपया आपके पास जा रहा है, 5,000 रुपया 25% शेयर के हिसाब से आपके दोस्त के पास जा रहा है। अब हम अज्यूम करते हैं कि जो ये नान की दुकान की कंपनी है, इस कंपनी के 1 मिलियन शेयर्स हैं और 1 मिलियन शेयर्स में से 75% शेयर जो कि लेट से मेरे पास हैं, तो 7,50,000 शेयर मेरे पास हैं और 2.5 लाख शेयर जो है वो मेरे दोस्त के पास है जो कि रिप्रेजेंट करता है 25% ऑफ द कंपनी। अब मेरा दोस्त कहता है कि यार मैंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ना अपने नान की दुकान के अंदर, उस इन्वेस्टमेंट में से मैं 50% जो है ना वो मैं आगे अपने तीसरे दोस्त को बेच देता हूँ, क्योंकि मेरे तीसरे दोस्त को पता है कि यार ये नान की दुकान अच्छी जा रही है, इसकी जो मैनेजमेंट है मुजम्मिल जो चला रहा है बेहतरीन चला रहा है, मुझे भी इसमें पैसा डाल के यू नो पार्टनर बनना है, और मेरे दोस्त ने उस पैसे को निकाल के उसने अपनी बेटी की शादी करनी है। तो वो क्या करेगा कि जो उसके पास 2.5 लाख शेयर्स हैं उसमें से 1,25,000 शेयर्स जो हैं वो अपने दोस्त को आगे बेच देगा, जो भी उसकी प्राइस है उसके ऊपर वो करके बेच देगा। और अब क्या हुआ, अब कंपनी में 7.5 लाख शेयर मेरे पास है, यानी कि 75% मेरी ओनरशिप है, 12.5% ओनरशिप मेरे दोस्त की है, 12.5% ओनरशिप उसके दोस्त के पास है। अगेन कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, सुबह शाम हम यही करते हैं, हमारे बिजनेस होते हैं उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, डिफरेंट लोग आगे पीछे इन्वेस्ट कर लेते हैं, हम सारा लोकली हम सब ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। यही काम ऑन अ मच हायर लेवल स्टॉक मार्केट पे हो रहा है। मुख्तलिफ कंपनीज हैं, उन कंपनीज ने डिफरेंट अपनी जो ओनरशिप स्टेक्स हैं वो मार्केट में उन्होंने दिए हुए हैं और वो जो शेयर्स हैं वो एक शेयर है कंपनी का, कंपनी की ओनरशिप। यानी कि आप जब किसी कंपनी का एक शेयर लेते हैं तो आप उस कंपनी की ओनरशिप का एक टुकड़ा अपने पास रख रहे होते हैं। अब अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो वो आपको डिविडेंड्स देगी, और ओवरऑल जैसे जैसे कंपनी का साइज बढ़ता जाएगा, क्योंकि कंपनी के शेयर्स जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, वो ये नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से शेयर्स नए शेयर्स बना ले, तो जितनी ओनरशिप आपके पास है वो आपके पास उतनी ही रहती है। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी ओवरऑल तो उसके शेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। खैर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो करूंगा ऑन हाउ स्टॉक मार्केट्स वर्क, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में अ लॉट मोर पीपल नीड टू बी इन्वेस्टेड इन टू द स्टॉक मार्केट, बट दैट फॉर अनदर डे। इस वक्त जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि देखें, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों में बहुत बिजी होते हैं और हमारे पास वो इंसाइट नहीं होती to be able to make the relevant right investments at the right time, especially जब हमें से बहुत ज़्यादा लोग अपने अपने businesses खड़े कर रहे होते हैं। मैं खुद आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने अपने Instagram के ऊपर एक basic सा survey किया जिसमें मैंने लोगों से पूछा कि यार आप लोगों के पास savings हैं नहीं हैं, कितनी हैं, एक limits बता दी, और मैंने उन लोगों से पूछा। जब मैंने total amounts को add up किया, ये मैं बता रहा हूँ, मेरे पास उस वक्त कोई तकरीबन 1.25 लाख followers थे, और उन followers में से तकरीबन कोई 10-15 हज़ार लोगों ने survey में participate किया। उन लोगों में से जो total cash available था ना, मतलब कि कितनी savings थी, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख, सारा का सारा आप aggregate करें तो roughly अराउंड 5 अरब रुपए बन रहा था। अच्छा फिर मैंने लोगों से पूछा कि यार इस कैश का आपने क्या करना है। ज़्यादातर लोगों ने बोला कि या तो हम संभाल के रख रहे हैं, बस पड़ा हुआ है हमारे पास, या वो कह रहे थे कि यार हमने कोई रेस्टोरेंट खोलना है, या वो कह रहे थे कि हमने कोई छोटा बिजनेस करना है। अच्छा मज़ार बात यह है कि वो रेस्टोरेंट जो खोलने की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो रेस्टोरेंट खोलने की बात कर रहे हैं, 98% ऑफ ऑल रेस्टोरेंट्स ऑल ऑफ देम फेल। सो कैश पूरा का पूरा बेसिकली वो 60-70-80 लाख रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया, वो जाके लगाया, पहला एक्सपीरियंस था बिजनेस करने का, लोगों ने आके शदीद बेवकूफ़ बनाया, जलील किया, आपका बिजनेस ठप, पैसा सारा जाया। अब इसी सिचुएशन के फ्लिप साइड के ऊपर दूसरी फुर्सत में लोग क्या करेंगे, वो कहेंगे कि यार अच्छा मेरे पास ये पैसा है, मैं जाता हूँ, मैं किसी जानने वाले के पास जाके वो पैसा लगाता हूँ। मसलन मेरा कोई मामू है या मेरा कोई भाई बहन है जो कि कह रहा है कि यार मैं ना रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, तू भी मेरे साथ लगा ले, वारे न्यारे हो जाएंगे। उसका ऑलरेडी रेस्टोरेंट है, वो कह रहा है यार पैसे लगा, तू इन्वेस्ट कर, पैसे बेहतरीन हो जाएंगे। अच्छा मसला ये बहन भाइयों के या चचा या दोस्तों के बिजनेस में इन्वेस्ट करने में कि यार आप ना एक ट्रस्ट के ऊपर कर रहे होते हैं, आपको 1.5 रुपए का नहीं पता कि वहाँ पे क्या काम हो रहा है, उसके नंबर्स क्या है, उसकी अकाउंटिंग क्या है, आपके पास जीरो ट्रांसपेरेंसी है। और मोर ऑफन देन नॉट होता ये है कि आप उसके उसमें बिजनेस में पैसे लगाते हैं, वो बिजनेस जो है वो चलता नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और वो बिजनेस ठप हो जाता है, और आप सोचते हैं यार यू नो व्हाट, मेरा पैसा लेके भाग गया। तो अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी ना, मेरा कोई दोस्त आएगा कहेगा यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे तू आके ना मेरे बिजनेस में 50 लाख रुपया लगा दे, मैं कभी भी उसके बिजनेस में पैसा नहीं लगाऊंगा। क्योंकि वो एक तो दोस्त यार बहन भाई अपना जो फैमिली मेंबर होता है ना उससे, तो वैसे ही बंदा जो है वो एक बिजनेस रिलेशनशिप बनाता है उसे पूछते हुए कि यार मुझे जरा अकाउंटिंग दिखाओ अपनी, तुम पैसे कहीं एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं कर रही, ये वो करते हुए थोड़ा शर्मिंदा फील करता है, अपनी एक रिलेशनशिप होती है। दूसरा ये कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती ना, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मेरी वो रिलेशनशिप, क्योंकि मेरी एक पर्सनल रिलेशनशिप है, इट विल ऑलवेज स्टॉप मी फ्रॉम आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। ऑन द अदर हैंड मुझे पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जो कि मुझे पता है कि पाकिस्तान के स्मार्टेस्ट लोग उन बिजनेसेस में काम कर रहे हैं, मैं उनमें क्यों ना इन्वेस्ट करूं। अगेन फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेसेस आपके सामने होंगे बचपन से बड़े होने तक आप देख रहे होंगे, यूनिलीवर हो गया, एंग्रो हो गया, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हो गई जो कि आप देखते हैं, आपको पता है वो एग्जिस्ट करती हैं, वो 10 साल पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, वो 10 साल बाद भी एग्जिस्ट करेंगी, वो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनको पता है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में अच्छे हालात में कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। तो मेरे लिए बड़ा लॉजिकल है कि आई वुड रादर इन्वेस्ट माय मनी इन विद द एक्सपर्ट्स रादर देन विद दिस न्यू गाय हु इज जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस विद दिस आइडिया कि यार मैं इस पैसे को 10 गुना बढ़ा दूंगा और हम सब माला माल हो जाएंगे। अल्टरनेटिवली अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज कि वो जाते हैं, उनका कोई दोस्त आए कहता है यार मेरे पास स्कीम है, इतने पैसे लगा, 5 लाख रुपया लगा, तुझे 30,000 रुपया महीने का मिलता रहेगा, या ये स्कीम है फाइल में मैं लगा रहा हूँ, पैसा डबल हो जाएगा। अगेन क्रेजी अमाउंट ऑफ रिस्क, जीरो ट्रांसपेरेंसी, आपको कोई आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी बिजनेसेस इस वजह से दुनिया में कंपीट नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का कल्चर ही नहीं है। हम तमाम लोग अपनी डेढ़ की मस्जिद बनाते हैं, ना तो हमारे बिजनेसेस को शौक है कि वो अपनी ओनरशिप किसी के साथ शेयर करें, अपनी सक्सेस किसी के साथ शेयर करें, और ना लोगों को शौक है कि यार जो सक्सेसफुल आदमी है मैं उसी को हेल्प करूं कि वो मजीद ऊपर जाए, बजाय इसके कि मैं देखूं कि यार उस बंदे की नान की दुकान अच्छी जा रही है ना यहाँ पर, मैं ऐसा करता हूँ मैं उसे कॉम्पिटिशन खोल लेता हूँ उसके बिल्कुल साथ। अब उससे होता ही है ना वो अच्छा चल पाता है ना वो अच्छा चल पाता है, उससे बेहतर है यार उस नान की दुकान वाले के पास जाएं, उसको बोलें कि यार तूने पैसा लगाया मैं भी पैसा लगाता हूँ, तुझे पता है तूने किस तरह से एक अच्छी सक्सेसफुल दुकान यहाँ पे बनाई है, तू मेरा पैसा ले और कहीं और जाके इसी तरह की सक्सेसफुल नान की दुकान चला, ताकि ओवरऑल बिजनेस ग्रो हो, पैसा मेरा कंसोलिडेट होगा, कंपटीशन नहीं होगा कोलैबोरेशन होगी। सो एनीवेज ये अब होना ही होना है इवेंचुअली, अब हमने कंपटीशन से हटके कोलैबोरेशन में जाना है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो उसमें कोलैबोरेशन कैसे होगी, जिन लोगों को ऑलरेडी अच्छा बिजनेस करना आ गया है, जिन लोगों के वो स्ट्रक्चर्स बन गए हैं जिसमें वो अब ग्रोथ को लो कॉस्ट पे अचीव कर सकते हैं, वो जाएंगे और जाके अपने आप को लिस्ट करेंगे, और लिस्ट करके मार्केट जो है वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी और उस पैसे से वो जाके अपनी ग्रोथ को फ्यूल करेंगे। सो पर्सनली मैंने तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैं स्पेस में आया, मैंने इसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया और मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार अगर मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता, 2-2.5 साल पहले मुझे नज़र आ गया था कि पाकिस्तान की जो लोकल इकोनॉमी है उसने अब एक क्रैश की तरफ जाना है, तो मुझे समझ आ गई थी कि यार अच्छा इवेंचुअली डॉलर बेस्ड बिजनेसेस नहीं चलना है, जो आपके इंपोर्ट बेस्ड बिजनेसेस हैं उनके हालात थोड़े से टाइट होंगे इस वक्त। एंड सो मैंने एक बड़ी बेसिक सी सोच निकाली और मैंने कहा यार कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि डॉलर बेस्ड काम कर रहे हैं, कोई IT कंपनीज हैं, कोई एक्सपोर्ट कंपनीज हैं, वो एक मीट द मीट कंपनी है, तो ऑर्गेनिक मीट कंपनी है, द मीट कंपनी है पता नहीं, जो कि जिनका टोटल धंधा ही है कि जी हम मीट को एक्सपोर्ट करते हैं मिडल ईस्ट एंड सो ऑन। अब मुझे पता है यार इन्होंने एक्सपोर्ट करना है, पाकिस्तानी PKR की वैल्यू गिरे ऊपर जाए उससे क्या ही फर्क पड़ता है, इन्होंने एक्सपोर्ट करते रहना है, इनका रेवेन्यू डॉलर में आना है, इनका जो टोटल ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी सो ऑन एंड सो फोर्थ वो प्रोटेक्टेड रहेगी इस मार्केट क्रैश के अंदर। और वो यही हुआ कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर अगर आप जाके देखें तो जितनी भी ये डॉलर बेस्ड कंपनीज हैं, IT कंपनीज हैं या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं, उनका सीन सही है, वो स्टेबल है, उनको कोई टेंशन नहीं हो रही। सो एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्टॉक मार्केट्स को देखें, अगर मैं कहूंगा कि इस वक्त अगर मैं कहीं पे पैसा डालना चाहूंगा तो मैं स्टॉक मार्केट में डालूंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट अनस्टेबल हुई हुई है तो ऑलरेडी जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं वो स्पूक हुए हैं, तो स्टॉक मार्केट की प्राइसेस पर्सनली आई थिंक बड़ी अच्छी हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और अगले 2-3 साल में जब हम स्टेबिलिटी से वापस ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट है वो बहुत ज़्यादा राइज करेगी, उसने बेसिकली नॉर्मलाइज होना है, उसने अपनी बेस वैल्यू पे आना है, अभी वो अंडर वैल्यू हुई हुई है। एंड सो आई पर्सनली थिंक अ लॉट मोर पाकिस्तानीज नीड टू इन्वेस्ट इन टू स्टॉक्स। अगेन मैं डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स एज ए लाइफ स्किल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार आपका अगर कैश पड़ा हुआ है ना, फालतू पड़ा हुआ है, तो आप उसको जाके स्टॉक्स में लगाएं, सोच समझ के लगाएं, देखें कि कौन सी कंपनी आपको लगता है कि वो सस्टेन कर सकती है, वो ग्रो कर सकती है, लेकिन उसके अंदर लगा करके भूल जाएं, तो आपको 2-3-4 साल में ओवरऑल आपका जो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है वो भी आपको मिलेगी, आपको ग्रोथ भी मिलेगी। सुबह शाम अगर आप देखेंगे कि ओ जी अब डाउन हो गई, ओ जी अब अप हो गई, तो जाहिर है आप एंग्जाइटी में जाएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं कैश की वैल्यू की बात करूं तो कैश बर्न होता है, कैश जो है वो डिवैल्यू होता है, वेयर एज स्टॉक जो है वो इन द लॉन्गर रन ना सिर्फ प्रोटेक्ट करता है अपने आप को इन्फ्लेशन से बल्कि वो ग्रोथ भी ला के देता है। अच्छा जाहिर है इसके ऊपर आपके सवाल आ रहे होंगे कि यार ये मैं कैसे करूं, मैंने तो पहली दफ़ा सुना है इसके बारे में, मुझे इतनी टेंशन हो रही है, तो अगेन एक तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियोज़ मिलेंगी, गूगल करना शुरू करें, यू नो व्हाट आर स्टॉक्स, व्हाट स्टॉक्स टू बाय, हाउ टू गो अबाउट इट। पर्सनली मैं पिछले 2-2.5 साल से आई बिन यूजिंग सरमाया, सरमाया इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, वहाँ पर सारा डेटा अवेलेबल है, तमाम कंपनीज का डेटा अवेलेबल है, आपने अगर ये देखना है कि उनकी ओवरऑल स्टॉक परफॉर्मेंस कैसी रही है डिफरेंट कंपनीज की, वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंपनीज देखनी है कि यार पोल्ट्री में कौन सी कंपनीज हैं, टेलीकॉम में कौन सी कंपनीज हैं, ऑयल एंड गैस में कौन सी कंपनीज हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी, आपको जितना भी रियल टाइम मार्केट का डेटा है वो सारा सारा उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। दूसरी जो मेजर चीज़ है वो ये है कि स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से अगर आप वेस्ट में जाए ना तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 90% ऑफ देयर पॉपुलेशन इज वन वे और द अदर इन्वेस्टेड इनटू स्टॉक्स। एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान को कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होना ही होना है, आज नहीं भी हो रहे ना 2-4-5 साल बाद ही होगी पूरी पॉपुलेशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं, हम अपना पैसा उठाते हैं, उठा के उसको जाया कर देते हैं या पड़े रहने देते हैं या एक स्टूपिड से बिजनेस में लगा के उसको बर्न कर देते हैं। लॉन्ग टर्म में होगा ये कि क्वालिटी की कंपनीज इमर्ज करेंगी और वो कंपनीज अपने आपको लिस्ट करेंगी और फिर इवेंचुअली आप उनका शेयर लेंगे। तो ये मेरे हिसाब से ना स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स इज अ लाइफ स्किल, इट इज़ अ स्किल दैट एवरीबडी शुड नो, हर पाकिस्तानी को ये स्किल होनी चाहिए है। मुझे भी बड़े लेट पता लगा, मैं कोई तकरीबन 30-31 साल का था जब मुझे पता लगा अच्छा यार पाकिस्तान में भी स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करती है। बाहर के तो हम सुनते रहते थे कि यार माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक ऐसा हो गया, टेस्ला का स्टॉक ऐसा हो गया, बट पाकिस्तान का मुझे सीरियसली पता लगा ग्रोइंग अप, तो बस वाले साहब ने बोल दिया स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं करना, तो फिर हमने कभी देखा ही नहीं। बट जब मुझे पता लगा तो लईक भाई जो हुज़ दी CEO एंड फाउंडर ऑफ सरमाया, ही केम ऑन द पॉडकास्ट, उन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, उन्होंने अपनी एक ट्रेनिंग भी मुझे करवाई टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास वाली, जो कि फराज भाई ने डिलीवर की थी, इट्स अ रिमार्केबल ट्रेनिंग, उसने मुझे मेरा पूरा माइंड कम्प्लीटली खोल दिया कि स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लोगों के इमोशंस किस तरह चलते हैं, अगर आपने एक इन्वेस्टर बनना है तो दिस इज़ अ ग्रेट ट्रेनिंग। लाइक ये महंगी है, आई बी वेरी ऑनस्ट, उनकी आई थिंक 2 ट्रेनिंग्स हैं, कैपिटल मार्केट फंडामेंटल जो कि आपको पूरा बताती है कि स्टॉक मार्केट को आपने देखना किस तरह है, स्टॉक मार्केट को या फॉरेक्स मार्केट को किसी भी चीज़ को देखना किस तरह है, आपने कैसे जज करना है कि ये अच्छी कंपनी है ये बुरी कंपनी है, मार्केट के हालात को मद्देनजर रखते हुए आपको कैसे पता लगेगा कि यार इस कंपनी में पैसा डालूंगा तो लॉन्ग टर्म में मुझे पैसा वापस ला के देगी। दूसरी जो टेक्निकल एनालिसिस वाली है, मैंने जो पर्सनली ली थी उस पर ये वो आपको बताते हैं कि यार आपने किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना है, आपने कब बाय करना है, आपने कब बाहर निकलना है उसमें, आपने कब वो, हाउ डू यू टाइम योर इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लाई योर मनी, इट्स अ वेरी 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 यूजफुल लाइफ स्किल। मैं उसकी लिंक डाल दूंगा नीचे, मैंने आज उनको सुबह मैसेज भी किया था कि अगर मेरे जो फॉलोअर्स आ रहे हैं अगर आप उनको कोई डिस्काउंट दे सकें. सो उन्होंने ये कोड मुझे बना के दिया है दिल की बात 10, ये मैं यहाँ पे अपीयर भी करवा दूंगा तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. बट अगेन इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रेनिंग बट इट विल टेल यू एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, इन फॉरेक्स मार्केट, इन क्रिप्टो मार्केट. बेसिकली जितनी भी ये ट्रेडिंग रिलेटेड आपकी जो इन्वेस्टिंग स्किल्स हैं वो आपकी शार्पन हो जाएंगी और फिर इवेंचुअली आई थिंक पर्सनली पूरी जिंदगी आपकी इस्तेमाल होनी है. तो यू कैन चेक दैट आउट. बट एनीवेज स्टॉक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीबडी शुड बी इन्वेस्टेड इनटू स्टॉक्स इन पाकिस्तान. देर सुपर चीप, देर एट अ डिस्काउंट राइट नाउ और मीडियम टर्म पे आपको ये इन्फ्लेशन से भी प्रोटेक्ट करेंगे या आपको जितने भी झटके लग रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करेंगे. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. नंबर टू प्रॉपर्टी. अब आप कहेंगे यार मुजम्मिल भाई तो हमेशा रियल एस्टेट के खिलाफ बोलते रहे हैं, वो कहते रहे हैं बकवास होता है, चूना होता है, ड्रामा होता है. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लॉट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लॉट की फाइलें, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिक एंड मोर्टार, आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग्स एंड शॉप्स एंड अपार्टमेंट्स. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस? फॉर टू वेरी सिंपल रीजंस. लॉन्ग टर्म के ऊपर पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है. पाकिस्तान में बहुत बड़ी यूथ है जो कि अब एजुकेट हो रही है, जो कि इवेंचुअली फ्रीलांसर्स बन रहे हैं, जो कि बाहर के एक्सपोर्ट ड्रिवन चीज़ों में काम कर रहे हैं, वो डॉलर में कमाएंगे. वो जैसे जैसे बड़े होंगे उनकी शादियां होंगी, उन्होंने इवेंचुअली अपने जॉइंट फैमिली छोटे घरों से निकलना है और अपने घर खरीद रहे हैं. तो पाकिस्तान की इस वक्त प्रॉपर्टी इनक्रेडिबली अंडर वैल्यूड है. अगेन ज़मीनों को भूल जाएँ, ज़मीनों से जान छुड़ाएँ, बकवास चीज़ है ज़मीन. पैसा अपना लगाएं ऐसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जहां पर लोग रहने की सलाहियत रखते हैं. बट अगर मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे सकूं, अगर आप दुबई में जाते हैं ना तो ऑन एवरेज उनके दूर दराज इलाकों के अंदर आपको 2-bedroom का एक अपार्टमेंट रफली अराउंड इस वक्त पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से कुछ 10-12-15 crore रुपए का मिल रहा है. उसी तरह का एक अपार्टमेंट इस्लामाबाद के अंदर आपको मेरा ख्याल 2-2.5-3 crore रुपए में मिल जाएगा. अगेन ये एक डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है. पाकिस्तान में इस वैसे प्राइस कम है. अगेन अगर मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल की बात करूँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल बाय एंड लार्ज सेम है. हाँ ठीक है, दुबई में थोड़ी एक्स्ट्रा क्वालिटी की चीज़ें लगी हुई हैं, स्मार्ट होम वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन बाय एंड लार्ज कोई इतना डिफरेंस नहीं है. ज्यादा जो इसमें प्राइस का डिफरेंस है वो डिमांड पे है कि दुबई में इस वक्त जितनी प्रॉपर्टी अवेलेबल है उससे बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड है. तो इसी तरीके से अगर मैं पाकिस्तान को देखूं, पाकिस्तान में इस वक्त हाउसिंग की बहुत 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 मैसिव शॉर्टफॉल है. और ये शॉर्टफॉल मेरे हिसाब से तो अभी शुरू ही नहीं हुआ. अभी तो जब ये नौजवान आएगा, शादियां होंगी, बच्चे होंगे. आजकल का नौजवान वो वाला है भी नहीं कि वो जो है जी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता रहे और बस वो खुश रहे. वो अब ऐसे जैसे बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे उसकी सोशल मोबिलिटी हो रही है, वो अब चाह रहा है कि यार मेरा अपना सिस्टम हो, मेरा अपना घर हो. वो थोड़ा न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ जा रहा है. तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बहुत मैसिवली डिमांड बढ़ेगी हाउसिंग की. तो पहला तो ये रीजन कि अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान में, और मैंने किया हुआ भी है, तो मैं अपार्टमेंट्स में करूंगा, मैं बिल्ट अप स्पेसेस में करूंगा, मैं शॉप्स में करूंगा, मैं अपार्टमेंट्स में करूंगा. दूसरा रीजन बिल्डिंग्स में करने का ये है कि देखें बिल्डिंग किस चीज से बनती है. बिल्डिंग बनती है सरिए से, बिल्डिंग बनती है कॉन्क्रीट से. बिल्डिंग में सर्टन प्रोडक्ट्स यूज होती हैं, सर्टन कमोडिटीज यूज होती हैं. अब अगर मैं रुपए को रुपए से निकाल दूं, अगर मैं सिर्फ उस कमोडिटी की बात करूं, तो कमोडिटी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए आज भी उतनी लगेगी, 10 साल बाद भी उतनी लगेगी. तो मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं उस कमोडिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूं. मैं उस चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं कि आज अगर 2.5 lakh रुपए का सरिया है जिससे वो बिल्डिंग बन रही है, तो कल जब वो सरिया जो है ना रुपी क्रैश करेगा और वो सरिया 5 lakh रुपए का हो जाएगा, तो मेरी बिल्डिंग की वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ेगी. सो अगेन जो एक बिल्डिंग बनी हुई है ना वो हमेशा आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो आपकी बिल्ट अप बिल्डिंग को हमेशा कंपेयर करेगा कि नई बिल्डिंग बनाने की क्या कॉस्ट है. और नई बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट के अंदर हमेशा ज़ाहिर है कमोडिटीज़ की प्राइस आएगी. तो अगर रुपए की वैल्यू क्रैश करती है, कमोडिटी की प्राइस ऊपर जाती है, तो उस कमोडिटी से बनाई गई बिल्डिंग की प्राइस भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी. वेयर एज जो ज़मीन होती है ना, ज़मीन सारी की सारी वाइब्स पे चल रही होती है. ठीक है, आज वाइब अच्छी है, आज इन्वेस्टर के पास पैसा है, इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है, ज़मीन की प्राइस आसमान पे. कल इन्वेस्टर की वाइब चेंज हो गई है, इन्वेस्टर के पास पैसा नहीं है, इन्वेस्टर अपना पैसा खींच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगी. उस पीस ऑफ लैंड की कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रोडक्टिविटी लगी हुई नहीं है. बिल्डिंग के ऊपर मजदूरी लगी है, बिल्डिंग के ऊपर कमोडिटी लगी है. उस सारी चीज़ की कॉस्ट ऑफ टुडे वर्सेस कॉस्ट ऑफ टुमारो की वैल्यू हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी. एंड सो आज आपने इन्वेस्ट कर लिया, कल जब उन चीज़ों की प्राइस बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली आपकी बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ेगी. एंड सो दूसरा, अगर मैं कहूँगा कि यू वॉन्ट के यार फालतू कैश पड़ा हुआ है, उस कैश को मैंने कहीं लगाना है, तो आई वुड इन्वेस्ट इन टू प्रॉपर्टी. अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा हर बिल्डिंग, जाहिर है कि उसमें आपको देखना होगा कि यार कौन सी बिल्डिंग अच्छी है, यू नो नई बन रही है, अच्छे इलाके में है. ये अगेन इसके पीछे एक पूरी साइंस है. पर्सनली अगेन दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर, दिस जस्ट सम प्रोडक्ट्स दैट आई हैव फाउंड जो कि अच्छी हैं, यूजफुल हैं. सो आई थॉट मैं आपको बता दूं. हमारी पॉडकास्ट पे आए थे दाओ प्रॉपटेक वाले. दाओ प्रॉपटेक वाले क्या करते हैं कि वो जाते हैं जाके डिफरेंट बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स को पूरा इसी तरह एनालाइज करते हैं. उनका कोई 25-30 डिफरेंट पॉइंट्स का एक स्ट्रक्चर है जिसके तहत वो आइडेंटिफाई करते हैं कि एक बिल्डिंग की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इज अ गुड इन्वेस्टमेंट. और जब वो हो जाती हैं तो वो उसको ऑनबोर्ड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, और फिर वो आपको ब्रेक डाउन करके जिस तरह किस्तें होती हैं ना, तो उस तरह किस्तों के तौर पर आपको वो बेचते हैं. एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन एज लो एज 50,000 rupees. तो ऐसा नहीं होता कि यार नॉर्मली जब बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट में लोग जाते हैं तो वो ये होता है कि यार दो करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, ये एक फ्रीलांसर है जिसके पास लेट से दो चार पांच लाख रुपया पड़ा हुआ है, वो उसको इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो दाव प्रॉपर्टी क्या करता है कि वो आपको इंडिविजुअल स्क्वायर फुटेजेस भेज देता है, यानी कि वो कहता है कि यार मैं आपको 50 स्क्वायर फुट भेज दूंगा फॉर लेट से 5 लाख रुपया, और फिर इवेंचुअली लेट से कि वो 50 डिफरेंट स्क्वायर फुट्स जो है वो 10 लोगों ने खरीदे हैं मिला के, तो वो मिला के 500 स्क्वायर फुट का स्टूडियो अपार्टमेंट खुद से रेंट पे चढ़ाएंगे, और रेंट पे चढ़ा के जो उसका रेंटल इनकम आएगी वो उन तमाम 50 स्क्वायर फुट वाले लोगों को डिवाइड कर देंगे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू गेट इनटू प्रॉपर्टी, बिकॉज अगेन अगर हम बिल्डिंग्स की बात करें तो देर इज एक्चुअली ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट केस इनटू दैट। यू कैन चेक दम आउट एज वेल, यहाँ पर नीचे मैं लिंक डाल दूंगा। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, मैंने पर्सनली उनको वेरीफाई किया हुआ है, आई नो द पीपल हु आर रनिंग इट, सो आई कैन पर्सनली वाउच फॉर देम। फ्रॉड नहीं होगा, दो नंबरी नहीं होगी, बाकी अगर उनको आपको समझ आती है कि वो क्या बेच रहे हैं, रेलिवेंट चीज़ या नहीं रेलिवेंट चीज़, तो वो आपका अपना प्रेरोगेटिव है, बट यू नो ओवरऑल आई हैव सीन देयर प्रोडक्ट, इट्स फिनोमिनल the way that they do the accounting behind it, check them out as well. Anyways, अगर मेरे पास लेट से 60-70-80 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मैं सोच ज़्यादा नहीं सोच सकता कि मैंने कैसे अपना कोई नया बिजनेस खड़ा करना है या ये करना है या वो करना है, तो मैं बेसिक सा काम करूँगा, मैं जाऊँगा उस पैसे को किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी बिल्ट अप एरिया के अंदर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड दैट इज़ गोइंग टू ऑल्सो गेट मी सम सॉर्ट ऑफ एन इनकम बाय पुटिंग इट अप ऑन रेंट एज वेल इन द लॉन्ग रन। अच्छा, फिर वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि यार हमारे पास तो पैसा ही कोई नहीं, मतलब भाई हम क्या करें, हम तो नौकरी करते हैं, हैंड टू माउथ रह रहे हैं, 1.5 लाख रुपये तनख्वाह है और बस वही आ रही है और महंगाई इतनी होगी कि अब उस तनख्वाह पे गुजारा नहीं चल रहा। उन लोगों के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि यार आप जो भी कर रहे हैं ना पाकिस्तान में इस वक्त, बिकॉज पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो श्रिंक कर रही है, वो इस वक्त जो है वो एक रिसेशन के थ्रू गुजर रही है और वो रिसेशन इज़ गोइंग टू गेट वर्स। सो दिस इज़ द टाइम वेयर आई फील लाइक, मैं बिल्कुल भी इस बात का कायल नहीं हूँ कि लोगों को मुल्क से छोड़ के नहीं जाना चाहिए, भाई मुल्क का इकोसिस्टम आपको जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा आप उसी में ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इकोसिस्टम इस वक्त कंड्यूसिव नहीं है तो आपके पास फुल राइट है कि आप जाएं और जाके दुनिया में देखें कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। उसमें पर्सनली मैं आपको कहूँगा कि मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रियाद में, दुबई में, इस वक्त ये दोनों इलाके बूम कर रहे हैं। आई डोंट नो आने वाले वक्त में बूम करेंगे या नहीं करेंगे, एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि पाकिस्तान में पीपल डोंट टेक लिंक्डइन सीरियसली। जब आप मिडल ईस्ट में जाते हैं, वैसे तो आप पूरी दुनिया में जाते हैं बट मिडल ईस्ट में मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा कल्चर है कि हर चीज़ लिंक्डइन से ड्राइव हो रही होती है। लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल्स को साफ सुथरा बनाएं, अच्छी से तस्वीर लगाएं, अपने एक्सपीरियंसेस को प्रॉपर्ली मेंशन करें, अपने इर्द गिर्द के नेटवर्क के लोगों को ऐड करें, उस पर जो लोग रेलिवेंट हैं उनसे अपने आपको टेस्टिमोनियल्स दिलवाएं ताकि लोगों को आइडिया हो कि अच्छा यार आप क्या करते हैं और कितने वैल्यूएबल काम करते हैं। दूसरा, लिंक्डइन प्रीमियम खरीदें ताकि आपको वो इन मेल की अपॉर्चुनिटी आए तो आप लोगों को रीच आउट कर सकें, ईमेल कर सकें। तीसरा, जब आप जॉब ढूंढते हैं तो आंखें बंद करके बजाय इसके कि हर जॉब पे अप्लाई कर दें, ट्राई टू अप्लाई ऑन इन स्पेसिफिक जॉब्स, ऐसी जॉब्स जो कि आपको पता है कि आप अच्छी कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि यार बस मैं बस जॉब पे अप्लाई कर दूं और वो बस मुझे बुला लेगा, नहीं बुलाएगा, आप जैसे 50,000 लोग और कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जॉब ढूंढेंगे ना, लेट से आप किसी कंपनी में यहाँ पर सेल्स का काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप देखें कि यार वहाँ पे सेल्स की क्या जॉब्स हैं, फिर आप ये देखें कि यार अच्छा अगर यहाँ पर मैं सेल्स के अंदर किन्नू और माल्टे बेचता हूँ ना, तो वहाँ पर मैं पेट्रोल शायद नहीं बेच सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं किन्नू और माल्टे की कंपनी ढूंढता हूँ जिसको मैं ये दिखा सकूँ कि यार किन्नू और माल्टे मैं यहाँ भी बेच सकता हूँ ना, मैं वहाँ भी तुम्हारे पास आके बेच सकता हूँ। तो रेलेवेंस ढूंढने, और फिर जब रेलेवेंस मिल जाए तो आप ये देखें कि यार जो जॉब है उसके हायरिंग मैनेजर्स कौन है या उसके एचआर के लोग हैं, उनको फिर आप लिंक्डइन प्रीमियम यूज़ करके एक अच्छी सी पर्सनलाइज्ड आप मैसेज भेजें कि यार मैं पाकिस्तान में ये काम कर रहा हूँ, 6-8 साल हो गए मुझे काम करते हुए, आपकी ये जॉब आई थी, आई थिंक बहुत रेलिवेंट है, आई थिंक मैं कर सकता हूँ इसको अच्छे से, यू नो कैन वी क्या 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 हम कर सकते हैं कि हम इसको एक्सपर्टाइज कर सकें, या आई वुड लव टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। आप उस तरी इसको यूज़ करके आप बेसिकली उसकी नज़रों में आ जाएंगे और जो 10,000 एप्लीकेंट्स हैं आप उसके एप्लीकेंट के एटलीस्ट टॉप की लिस्ट में आ जाएंगे, जिसमें कम से कम आपको इंटरव्यू तो कर लेगा। वरना होता है बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर वो कहते हैं कि यार क्या बकवास है, ये तो बस पता नहीं वहीं से लोगों को हायर करते हैं। ऑब्वियसली जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि यार 15-20 ऐसी नौकरियाँ ढूंढें जो कि आपको लगता है आपके रेलिवेंट हैं, टिकट कटाएँ, वीज़ा लगवाएँ, दुबई जाएं, अपने दोस्त यार के पास रहें और उन कंपनीज में चले जाएं, उनसे कहें जी मैं तो दुबई में ही हूँ, मैं आया हुआ हूँ, ये आपकी जॉब है, मुझे हायरिंग मैनेजर से 15 मिनट का इंटरव्यू करवा दें। 25 में से शायद आपको 10 लोग तो टरखा देंगे, बाकी जो होंगे वो इंटरव्यू ले लेंगे, 2-4-3-5 से आपको ऑफर आ जाएगी। जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ ना दुबई में, रियाद में, वो लोग हैं जो हसलर्स थे, इन अ सेंस दैट दे एक्चुअली वेंट आउट देयर, एक महीने का उन्होंने वीज़ा लगवाया, टिकट कटाया, पहुँच गए और जाके उन्होंने कहा यार आपकी नौकरी है, मैं करने वाला हूँ, मैं करूँगा, मुझे बताएं। बट पॉइंट बीइंग के मिडल ईस्ट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर इस वक्त एंट्री बहुत आसान है पाकिस्तानियों के लिए, वहाँ पर जाएँ, जाके अपॉर्चुनिटी ढूंढें। बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त इस जोन में बैठे हुए हैं कि नहीं यार मेरा तो ये टाइटल है, मुझे तो जब तक इतने पैसे नहीं मिलेंगे मैं तो जॉब नहीं करूँगा। तो थोड़ी सी अपनी अकड़ को कम करें, थोड़ा सा रियलाइज़ करें कि यार आपकी बाइंग पावर बिल्कुल तबाह हो रही है। इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी रेलेवेंट फील्ड में, ये नहीं कह रहा फील्ड चेंज कर लें, या मैंने ये नहीं कह रहा कि यार बिल्कुल ही रैंडम चीज़ करना शुरू कर दें, बट अपनी फील्ड में अगर आपको अच्छी जॉब मिल रही है जिसमें अच्छा एक्सपीरियंस है, उसमें आपको थोड़ा सा पे कट भी लेना पड़ रहा है, अभी आप ले लें, अभी आप उस इकोसिस्टम में एंटर हो जाएं। और उस इकोसिस्टम में जब आप एंटर हो जाएंगे तो फिर आप वहाँ सेटल होने के बाद आप बहुत आराम से स्विच करके आप अपनी ओवरऑल अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं। बट आई वुड डेफिनेटली अर्ज कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली डू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड, बिकॉज अगेन वहाँ पर आप फॉरेक्स में कमा रहे होंगे, तो आपको जो इन्फ्लेशन साइकिल है आप उससे प्रोटेक्टेड होंगे। आप अगर अकेले भी वहाँ पर जाते हैं और आप वहाँ जाके कमाना शुरू हो जाते हैं, तो आप अपनी फैमिली को भी बैक होम बचा लेंगे। आपको टेंशन नहीं होगी कि यार अब स्कूल की फीस इतनी हो गई है, तो गाड़ी का किराया इतना हो गया है, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप चूँकि डॉलर्स या दिरहम्स में भेज रहे होंगे, तो यहाँ पर PKR की वैल्यू अगर क्रैश भी करती है तो आप प्रोटेक्टेड होंगे इफेक्टिवली। इसी तरीके से बियॉन्ड द मिडल ईस्ट आई वुड से कि लुक एट ऑल द कंट्रीज जहाँ पर पॉपुलेशन एज कर रही है। यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एज कर रही है, साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर, इन कंट्रीज़ में यूड बी सरप्राइज कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। यू जस्ट हैव टू कट थ्रू द नॉइज एंड लुक फॉर इट। आई नो लॉट ऑफ पाकिस्तानी इन साउथ कोरिया इवन, जो कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के घुसे हैं। तो लुक एट दीज कंट्रीज एज वेल। इसमें सिर्फ एक एडिशनल चीज़ ये करनी पड़ती है कि आपको लैंग्वेज इवेंचुअली, समटाइम्स बिफोर समटाइम्स इवेंचुअली सीखनी पड़ती है। बट अगर आपने लॉन्ग टर्म में ओवरऑल अपने आप को एक डिवेलप्ड इकोनॉमी की तरफ लेकर जाना है इंडिविजुअली स्पीकिंग, तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू लुक एट दीज कंट्रीज। यहाँ की पॉपुलेशन अब बड़ी हो रही हैं, इनको इमिग्रेंट्स चाहिए जो कि आएँ और आके वहाँ पर काम करें और उनको अच्छी तनख्वाहें भी देते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, आपके बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी अच्छी हो जाएगी, तो यू कैन लुक एट दोज एज वेल। ऑफ कोर्स अगर आप बाहर नहीं जा सकते, अगर आपको लगता है वो बहुत ख्वारी है, आप ऑलरेडी बहुत सेटल हुए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में 10 चीज़ें हैं, हो सकता है आपके पेरेंट्स हों यहाँ पर, तो लास्ट चीज़ मैं आपको कहूँगा, अगेन पिट गई है दुनिया ये कह कह के, लेकिन मैं फिर से उसको रिपीट करूँगा कि डिजिटल स्किल्स एक्वायर करें। बहुत सारी डिजिटल स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट हैं, मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिजिटल स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको IT ही करना है। अगर आप IT कर रहे हैं वेल एंड गुड, बट आने वाली दुनिया पूरी की पूरी डिजिटल हो रही है। अगर आप सुबह शाम जो है वो बैठ के कागज़ पेंसिल पे काम करते हैं, आपने अपने आपको लैपटॉप कंप्यूटर के साथ इक्विप नहीं किया, आपने टूल्स का इक्विप नहीं किया, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपनी फील्ड से रेलेवेंट तमाम वो टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करें जो कि इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं पूरी दुनिया के अंदर। उसके अंदर नई नई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने वाले भी चाहिए होते हैं। तो अगर आप कोई अकाउंटेंट है तो वो दुनिया के देखे कि कौन कौन से कटिंग एज नए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, वो उनको सीखे, और जब वो उनको सीखेगा तो मैं आपको गारंटी लगा के देता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसी अकाउंटिंग की जॉब्स होंगी जिसमें उस कटिंग एज सॉफ्टवेयर के यूज़ करने वाले बंदे की रिक्वायरमेंट होगी। एंड सो जब आप अपनी फील्ड की रेलेवेंट डिजिटल टूल्स को सीखते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो आप ग्लोबली रिमोटली बेच सकते हैं। फाइवर या अपवर्क टाइप के ऐसे प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर आप अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग यार, नहीं नहीं मुझे तो IT सीखनी है, मुझे पाइथन सीखनी है, मुझे XYZ सीखनी है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्ड की रेलेवेंट टूल्स को सीखना है। जो फील्ड है वो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइजेशन दे रही है कि यार मैं अकाउंटिंग को समझता हूँ, लेकिन अकाउंटिंग को करने का जरिया जो है या तरीकाकार जो है वो अब टेक्नोलॉजी चेंज करती जा रही है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू लर्न द लेटेस्ट टूल टू डू अकाउंटिंग, एंड व्हेन यू लर्न दोज टूल्स देन यू कैन फाइंड जॉब्स जो कि बहुत सारी आपको रिमोटली अवेलेबल होंगी। एंड एक दफ़ा आपने वो कर लिया, ज़िंदगी आसान। आपने $1,000 भी किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि यार मैं तुम्हारा महीने का ये सारा का सारा काम जो है वो $1,000 में कर लिया करूँगा, तो आप देख लें 280,000 रुपया तो आंखें बंद करके आपके पास आ रहा है। फिर $350 का गया तो आपको $350,000 मिलना शुरू कर देंगे। अगर वो $500 का जाएगा तो आपको $500,000 मिलना शुरू कर देंगे। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो डिजिटल स्किल्स सीखें और अपने आप को ग्लोबली बेचना शुरू कर दें। मैं क्यों कह रहा हूँ डिजिटल स्किल्स, बिकॉज अब भाई आप देखेंगे कि अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमीज जैसे जैसे रिसेशन में जा रही है ना, तो वहाँ पे आप ऑलरेडी सुन रहे होंगे गूगल में जॉबलेसनेस, 12,000 बंदा गूगल निकाल रहा है, तो अमेजोन इतने बंदे निकाल रहा है, तो फेसबुक इतने बंदे निकाल रहा है। देखें जब इकोनॉमी की हालत टाइट होती है ना, तो फिर बिजनेसेस जो है ना वो फिर कहते हैं कि यार हमें सस्ते में अब किस तरीके से हम अपने बिजनेस को चला सकते हैं सस्ते में इस वक्त। और सस्ते का वाहि तरीकाकार ये है कि यार जो गोरा जो चार्ज कर रहा है ना, $2-2.5 लाख लेता है वो, उसके एवज अगर उनको कोई $50,000-60,000 में पाकिस्तानी मिल रहा है जो कि उसको 90% भी काम करके दे दे, सो दैट बिजनेस इज गोइंग टू बिगिन टू चूज दैट ऑप्शन। एंड सो आई पर्सनली थिंक इवन दो इकोनॉमीज रिसेशन में, आई थिंक ऑफशोर का काम जो है वो ग्रो करेगा आने वाले दिनों में, पर्टिकुलरली बिकॉज हम जो है वो प्राइस पॉइंट के ऊपर कंपेयर टू अ लोकल एम्प्लॉई हम उनको बेहतर रेट दे सकते हैं। तो अगर आप बैठे हैं और आपकी एक नौकरी है और आप सोच रहे हैं कि यार लेफ्ट राइट दुनिया तबाह होती नजर आ रही है और मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा, मैं अपनी जॉब को कैसे बचाऊंगा, मैं अपने बच्चों का स्कूल कैसे बचाऊंगा, और आपके पास कोई पैसे नहीं है कि आपने स्टॉक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया, या आप इस वक्त अपने घर से निकल के बाहर नहीं जा सकते दुबई शुबई, तो मैं एक बेसिक सी सबसे आसान चीज़ जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि यार अपनी ही फील्ड में देखें कि इस वक्त कटिंग एज क्या हो रहा है, कौन सी टूल, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है आपकी फील्ड के अंदर, आपकी फील्ड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, वो टूल वो टेक्नोलॉजी सीख लें और वो सीख के फिर आप जाएं और जाके डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी स्किल्स को बेचना शुरू करें। अगेन इसके ऊपर फ्रीलांसिंग की स्किल्स के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो करूँगा कि उसके और ऑप्टिमाइज तरीके क्या होते हैं, कैसे आप जाके एक्चुअली देख सकते हैं कि डिमांड किन स्किल्स की है, ताकि फिर आप वही स्पेसिफिक स्किल्स सीखें। वंस यू लर्न दो स्किल्स तो कैसे आप अपने आप को बेहतर मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके मार्केट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज भी एग्जिस्ट करते हैं, बट इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, अगर आपके पास एक बैचलर्स की डिग्री है और अगर आप वही 50-60-70 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, 1 लाख की नौकरी कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, तो फिर मैं ये कहूँगा कि यार आपको थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए और अपने आप को डिजिटली बेचना चाहिए। क्योंकि आप बाहर, ऑनेस्ट टू गॉड, आप सोचें ना, आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, आप किसी को $500 का भी बेचेंगे ना, मतलब अमेरिका के अंदर जहाँ पर एवरेज जो पे है वो तकरीबन कुछ $6,000-$7,000 है एवरेज, मतलब कि उनका आम आदमी इतना कमाता है, उनका कोई अच्छा आदमी इतना नहीं कमाता, अच्छा आदमी तो $2-2.5 लाख कमा रहा है। उस बंदे को जो आप ऑफर करेंगे कि यार मैं $500 में तुम्हारा महीने का काम कर देता हूँ, वो $500 उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, पीनट्स हैं। वेयर एज आपके लिए वो 1 लाख रुपए की तनख्वाह के बजाय वो 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह आंखें बंद करके, फिर 500 को 1,000 करें वो 1 लाख रुपए की तनख्वाह के बस 280,000 रुपया बन जाता है इस टाइम के ऊपर, जो कि आने वाले दिनों में और ज्यादा हो जाएगा। तो बजाय इसके कि लोकल धंधा करें, लोकल ई कॉमर्स का बिजनेस बनाएं, लोकल नौकरी ढूंढें, आप अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करें, इंटरनेट को इस्तेमाल करें और दुनिया वालों को बेचें और डॉलर अपने लिए भी लेकर आएं और अपनी कॉम के लिए भी लेकर आएं। बट एनीवेज यहाँ पर मैं वीडियो खत्म करता हूँ। ये सारी की सारी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, नॉट जस्ट प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स बट आल्सो एज वी गो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो ओवरऑल पाकिस्तान का जो सोल्यूशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो मैंने सोचा वो मैं आपसे शेयर कर दूँ। इफ़ यू हैव एनी बेटर थॉट्स, इफ़ यू थिंक देर आर अदर वेज दैट यू नो पीपल कैन इन्वेस्ट मनी इन टू समथिंग दैट इज स्टेबल, नॉट टू रिस्की, कोई पॉन्जी या MLM स्कीम नहीं है, या अगर वो लोग अपना टाइम इन्वेस्ट करके आपको लगता है कि सर्टन स्किल्स की तरफ जा सकते हैं या सर्टन जॉब्स की तरफ जिससे जा सकते हैं, या आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आपको लेफ्ट राइट अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है जो कि आपको लगता है कि आपके ब्रदर पाकिस्तानी जो है अवेल कर सकते हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा। लेट्स हेल्प ईच अदर आउट, लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी दैट कैन सस्टेन ourselves ड्यूरिंग these tough टाइम्स। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे बड़े सारे व्यूअर्स आते हैं, वीडियो देखते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो सब्सक्राइब बराए करम ज़रूर करिएगा। मेरा टारगेट है कि मैं 3 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच जाऊँ। आई थिंक आई एम होपिंग कि इस वीडियो के बाद मैं पहुँच जाऊँगा। हमारे तमाम पेट्रंस जो कि हमें हेल्प और सपोर्ट करते हैं, उनका बेहद शुक्रिया। अगर आप भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दी गई हुई सब्सक्राइब की लिंक यूज़ करके यू कैन हेल्प अस कीप ऑन प्रोड्यूसिंग दिस कॉन्टेंट। बट एनीवेज दिस वाज़ सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी। You're watching Dil Ki Baat. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.